अभी एक आपका इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम टेबल ऐसे बना था, बीच में जो पीरियड खाली होगा उसमें हम रखेंगे आपस में एक दूसरे की इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन भी नहीं है आपकी। तो आज हमारे छोटे छोटे तीन सेशन हैं। अभी आधे घंटे का एक सेशन है जो इंस्ट्रक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन में आप सिलेबस वाली किताब लाए हैं? हाँ, वेरी गुड। इसमें आपका वो दिया हुआ है पेपर्स, चार पेपर्स हैं।
ओम शांति। हम अभी आपके साथ बात करेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कि सिलेबस से रिलेटेड तो आपको टीचर्स काफी कराएंगे, लेकिन एग्जाम से भी रिलेटेड काफी बातें होती हैं जो कि हमें पता हो तो फिर हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं और हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो एग्जाम आपका जो होगा, हमारे जो एग्जाम है वो सब पांचों पेपर 100-100 नंबर के हैं। तो 100 नंबर में से 25 नंबर की हमारी असाइनमेंट्स हैं, जो कि हमें अपने घर से ही बुक्स में से देख करके लिख के और वहां पर भेजनी होती है, और 75 नंबर हमारे थ्योरी पेपर के हैं। तो जो 25 नंबर की असाइनमेंट्स हैं वो हमें कैसे बनानी है, 25 नंबर की जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारी हर बुक में 5 यूनिट होती हैं, तो एक यूनिट में से एक असाइनमेंट बनानी है। एक असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो यूनिट है उसके पीछे लिखी होती है यूनिट असाइनमेंट, तो उसमें से आपको जो भी अच्छी लगे, जो आप अपनी अपनी पसंद है सबकी कि कौन सा चैप्टर कौन सी मतलब आपको अच्छा लगेगा टॉपिक, तो आप जिन सा टॉपिक आपको अच्छा लगे उस पर आपको असाइनमेंट तैयार करनी है। और हर यूनिट में से जब एक एक बनाएंगे तो 5 हो गई, तो एक असाइनमेंट के 5 नंबर हैं, तो कितने नंबर हो गए, 25 नंबर। तो हर पेपर में ऐसे ही करना है आपको। तो और जो असाइनमेंट आप बनाएंगे ना वो A4 साइज के पेपर पर बनेंगी, और 300-350 वर्ड होंगे उसमें, 3-4 पेज की बनानी होती है, और उसमें हर पेज के कोने में ऊपर लिखना होता है अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर। और हर असाइनमेंट जब बनाएंगे आप 3-4 पेज की, उस पर पहला पेज एक प्लेन पेज लगाएंगे, उसके ऊपर भी 5-6 बातें लिखनी होती हैं हर असाइनमेंट के ऊपर। उसमें सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना होता है, तो जो असाइनमेंट आप बनाएंगे ना उसके ऊपर एक पेज प्लेन पेज लगाएंगे, उसके ऊपर 5-6 बातें लिखनी है। पहला तो अपना नाम लिखेंगे आप उस पर, फिर दूसरा अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, तीसरा अपना मीडियम लिखेंगे जिसका हिंदी है इंग्लिश है, और चौथा आप अपना कोर्स का नाम लिखेंगे, जो बुक का नाम होता है ना वो लिखेंगे, और तीसरा फिर यूनिट का नाम जिस यूनिट में से आपने असाइनमेंट बनाई है, और लास्ट में होगा कि जमा करने की तिथि, कि जिस दिन आप उसको जमा करेंगे यूनिवर्सिटी भेजेंगे, तो आपको ये दो असाइनमेंट जो बना दी ना पहली और दूसरी यूनिट की चारों किताबों में से, यानी कि 8 असाइनमेंट्स, ये आपको 31 जनवरी तक भेजनी है तैयार करके, हर बुक में से पहली 2 असाइनमेंट, यानी कि 8 असाइनमेंट हो गई, तो वो आपको 31 जनवरी तक तैयार करके भेजनी है। और उसके बाद जो 3-3 असाइनमेंट रह जाएंगी हर एक किताब की, यानी कि 12 असाइनमेंट, वो आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी भेजनी है। आ गया समझ में? अच्छा, बुक्स मिल जाएंगे आपको, वो भी सभी मिल जाएगा। अभी आपको अभी नहीं मिला तो इतना आपका कोर्स चलेगा, इतने सभी पे आपको मिल जाएगा। हाँ, सब मिल जाएगा। हाँ जी, रोल नंबर वगैरह कह रहे हैं।
किस किस को किताब नहीं मिली? अभी 7 बजे पांडवनी भाई क्लास है, उसमें आप बताना है ना किताब। वो कह रहा था हमने सबको किताब भेज दी है 2 महीने पहले। किस किस ने दिसंबर में एडमिशन लिया? अच्छा, बाकी ने पहले ले लिया था। अच्छा, अभी अभी आएगा इसमें। एक्चुअल में क्या है, असाइनमेंट क्या है, जो आपकी बुक आएंगी, बुक में, हाँ, हर बुक में 5 चैप्टर, हर यूनिट के, जैसे इसमें है 5 चैप्टर हैं, इसमें हर एक में यूनिट मींस चैप्टर, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक में होगा यूनिट असाइनमेंट जिसमें 3, 2 या 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको छांटना जो आपको अच्छा लगता है, और उसी चैप्टर में से वो 2.5, 3, 4, 3.5 पेज लिखने हैं, उसे कहते हैं असाइनमेंट। चालू हो गए भाई? एक बुक के 5 असाइनमेंट, एक बुक में 5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर का 1 क्वेश्चन, तो 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के 5 नंबर, तो 5 क्वेश्चन के 25 नंबर हो गए। क्लियर हो गया? हाँ बोलो। जो आपको पहली भेजनी है, 8 क्वेश्चन भेजने हैं, 8 क्वेश्चन पहली बार में, उसकी 31 जनवरी लास्ट डेट है भाई। 1 चैप्टर का 1 हो गया ना, इस किताब के 5 हैं, लेकिन आपको 31 जनवरी कितने भेजने? 5 नहीं भेजने, 2 भेजने हैं, हरेक के, पहली किताब के 2, दूसरी के 2, तीसरी के 2, चौथी के 2, हरेक के 2, 4 किताब हो गए, 8 हो गए। 31 जनवरी तक 8 क्वेश्चन भेजने हैं, हर किताब के 2 चैप्टर, पहले 2, 1 चैप्टर का 1, दूसरे चैप्टर का दूसरा, तो हर किताब के 2 असाइनमेंट होगी, 4 किताब की 8 असाइनमेंट होगी। ये 31 जनवरी तक किताब में से तो क्वेश्चन लिखने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक आ जाएगी आपकी। इसके बाद अब 3-3 चैप्टर और बच गए, तो वो 31 मार्च तक भेजने हैं। जो 3rd, 4th और 5th चैप्टर बच गया, एक हर किताब के 3 चैप्टर और बच गए, हर किताब में 5 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर के आपने लिख दिए, 3-3 और बच गए, 3-3 के फिर लिखने शुरू करने 31 जनवरी के बाद, 3, 4 के 12 हो गए, वो 31 मार्च तक भेजने हैं। अच्छा, बीए किया सबने? इंस्ट्रक्शन बुक्स के हिसाब से चेंज हो गई है, पहले 31 दिसंबर दिया होगा इसमें भाई। क्लियर सा है, 1 में 5 चैप्टर हैं, तो 4 किताब में कितने हैं? 20, तो 20 क्वेश्चन लिखने हैं, इसमें से 8 क्वेश्चन पहले भेजने हैं, 12 क्वेश्चन बाद में भेजने हैं, हर किताब के 2 क्वेश्चन एक बार लिखो, फिर बाकी 3 क्वेश्चन बाद में, बस। क्लियर हो गए?
हाँ भाई, आगे समझ में असाइनमेंट का चक्कर आ गया ना। अब उसके बाद ये तो आपके 25 नंबर का पेपर हो गया, अब ये 25 नंबर का पेपर तो आपको समझो तैयार हो गया, क्योंकि आपको घर से ही बुक्स में से देख के लिख के तैयार करके यूनिवर्सिटी भेजना है। अब उसके बाद रह गया 75 नंबर का पेपर। अब जो हमारा थ्योरी का पेपर आएगा प्रैक्टिकल, उसमें क्या होगा कि 75 नंबर के जो पेपर है उसके 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में 10 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, और वो आपको सारे करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 करने हैं, 3 की चॉइस है, और वो 5-5 नंबर के हैं, तो वो हो गए 25 नंबर के। उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट में 6 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, उसमें से आपको 4 करने हैं, तो वो 40 नंबर के, तो टोटल हो गया 75 नंबर का पेपर। तो इस तरह से आपके थ्योरी का पेपर आएगा। हाँ जी, चले आगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे 4 बुक्स के पेपर होंगे। अब आप अपना मॉडल टेस्ट पेपर निकाल लो, आपके पास जो सिलेबस की बुक है ना, उसमें से आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। अब आपके लिए इजी हो जाएंगे फिर नोट्स तैयार करने कि कौन सा क्वेश्चन आपको बुक में कौन से पेज नंबर पर दिया हुआ है।
जिनके पास बुक नहीं आई वो ऐसा करना, एक पेज आपके पास होगा, 1 से 24 तक नंबर लिखना, 1 to 24, क्योंकि 24 क्वेश्चन है और 4 पेपर है, तो यहाँ पेपर 1, 2, 3, 4 एक पेज भी हो जाएगा 1 से 24 तक। तो ये बोलेंगे कि पहला क्वेश्चन कितने पेज का, पहले पेपर का, जैसे पहला क्वेश्चन है 10 और 11 पेज पर, तो यहाँ पहले पेपर में 10 और 11 पेज लिख लेना। जो ई लिखा हुआ ना, जिसके पास इंग्लिश मीडियम है वो रेड में लिखा हुआ है, जिनके पास हिंदी मीडियम है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, तो आपको एक लिखना है आइदर हिंदी और इंग्लिश। क्लियर हो गया? तो ये उतारने हैं आपको, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा आपको कि जब आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि 70% जो पेपर है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जाएगा, तो आपको ढूंढना भी पड़ेगा बहुत सारा, पढ़ना तो सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ढूंढने भी पड़ेंगे, आपको उन पेज मिल जाएंगे और उनसे आप पढ़ सकते हैं।
कोई अगर पेज कम ज्यादा हो सकता है।
सबने निकाल लिया, तो फिर पेज पर नंबर लगा लो 1 से 24 तक। लगा लिया? पहले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पेपर का 11-12 पेज पर, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 32 नंबर पेज पे, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 117 पेज पर।
ये लिखा हुआ है सामने, ये सामने लिखा हुआ है आपके,
जो रेड से लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और जो ब्लैक से लिखा है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए।
अभी आपको कैसे करना है, एक क्वेश्चन है वो 11 पेज और 12 पेज दो पेज पे होगा, तो यहाँ 11 और 12 लिखो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो 32, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे नीचे 32 लिख दो, ठीक है। फिर 3 नंबर 117 पेज, इसके नीचे 117 लिख दो, ये पहले पेपर के हो जाएंगे। तो उतार में ही आपको कुछ नहीं था आगे
है। पांचवे क्वेश्चन का आंसर है 75 पेज पर, फोर्थ का 9, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 5, और सेवन क्वेश्चन का आंसर है 117 पेज पर, आठवें क्वेश्चन का आंसर है 24 पेज पर, नौवें क्वेश्चन का आंसर है 62 पेज पर।
इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको, उतार लो, ये सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी।
अब ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर है 12-14 पेज पर, बारहवें क्वेश्चन का आंसर है 15-20 पेज पर,
15 से 20,
और तेरहवें क्वेश्चन का आंसर है 34 से 37 पेज पर, और चौदहवें क्वेश्चन का आंसर है 77 पेज पर, और पंद्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 91-94, सोलहवें क्वेश्चन का आंसर है 122-123 नंबर पेज पर, और सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 38 पेज पर, और अठारहवें क्वेश्चन का आंसर है 24 पेज पर। अब शुरुआत का सबसे पहले का कह रहे, सबसे स्टार्टिंग का बताओ।
ये आपको लिखना ही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो बहुत इजी है, पहली क्लास के बच्चे क्लास हो रही है अभी तो। भाई 1 से 24 आपके लिखे हुए हैं, उस पर पेज नंबर लिखना, आपको कुछ भी लिखना, इसमें कोई कम्प्लीकेट अभी तो जो पढ़ाई होगी उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगी।
19 क्वेश्चन का आंसर है 127 से 131, 20वें क्वेश्चन का आंसर है,
माइक साहब पास में,
20वें क्वेश्चन का आंसर है
माइक
31 से 37 पेज पर, 21वें क्वेश्चन का आंसर है 117 पेज पर, 22वें क्वेश्चन का आंसर है 127 से 131, 23वें क्वेश्चन का आंसर है 24। ये ना काफी सारे पेजेस में से आपको ढूंढ कर निकालना होगा, और 24वें क्वेश्चन का ए पार्ट का है 12 पेज पर, बी पार्ट का है 58 पेज पर, और सी पार्ट का है 85 से 87 पेज पर। अब आपका एक पेपर खत्म हो गया। हाँ हाँ, जो इंग्लिश मीडियम का वो रेड वाला, और जो हिंदी मीडियम का है ब्लैक वाला।
एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूं, जहां कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके ऊपर पेज नहीं लिखा होगा, उसका मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस है बहुत सारे पेज पर दिया होगा, बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा। बाकी लगभग 99% के कुछ क्वेश्चन पेज फिक्स है, और कहीं 17वें पेज पे भी है कुछ आंसर, कुछ 20वें पेज पे है, कुछ 25वें पेज पर है। दूसरा जो 3 पार्ट है, ए पार्ट, वो क्योंकि 1 नंबर का है, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, वो 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। जो बी पार्ट है मीडियम क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके डेढ़ पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम वन एंड हाफ टू टू पेज, दो पेज से ज्यादा नहीं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 10 नंबर के हैं, वो चार पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो बताएगी कि कैसे कैसे हमें लिखना है। और इसमें लिखने में आपने सारे क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको तो नंबर और पेज लिखना है, खाली नंबर और पेज लिखना है, और उसके बाद फिर भी आपका रह जाएगा तो स्लाइड्स आपको घर के लिए दे दी जाएंगी, एक कैसेट बना के, एक सीडी बना के, उसमें आप बाद में देख भी सकते हैं।
अब आ गया पेपर टू। पेपर टू में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 113 पेज पर, 113। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 56 पेज पर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 19 पेज पर। चौथे क्वेश्चन का आंसर है 72 पेज पर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है 41 पेज पर। छठे क्वेश्चन का आंसर है 78 पेज पर। सातवें क्वेश्चन का आंसर है 85 पेज पर। आठवें क्वेश्चन का आंसर है 12 पेज पर। नौवें क्वेश्चन का आंसर है 121 पेज पर। और दसवें क्वेश्चन का आंसर है 90 पेज पर। चले हो गया। ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर है 75 पेज पर। बारहवें क्वेश्चन का आंसर है 14 पेज पर। तेरहवें क्वेश्चन का आंसर है 36-37 पेज पर। चौदहवें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपको इसी तरह से बुक्स में से ढूंढना पड़ेगा, कई जगह मिलेगा।
ये रिलीजियस बिलीफ है, बहुत सारे धर्म अर्थों ने बहुत सारे कही हैं, तो पूरे पेज में देखना क्रिश्चियन ने क्या कहा, हिंदुइज्म ने क्या कहा।
और 15 क्वेश्चन का आंसर है 91 पेज पर। 16वें क्वेश्चन का आंसर है 102 पेज पर। और 17वें क्वेश्चन का आंसर है 116-117 पेज पर। और 18वें क्वेश्चन का आंसर है 125 पेज पर। हो गया सभी का? अब 19वें क्वेश्चन का आंसर। 20वें क्वेश्चन का आंसर है 95-96 पेज पर। 95-96। और 21वें क्वेश्चन का आंसर है 66-67 पेज पर। और 22वें क्वेश्चन का आंसर है 87-88 पेज पर। 23वें क्वेश्चन का आंसर है 56-61 पेज के बीच में मिलेगा। फिर 24वें क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर है 20 पेज पर, और बी पार्ट का है 42 पेज पर, और सी पार्ट का है 88 पेज पर। अब आ गया पेपर थ्री। पेपर थ्री में पहले क्वेश्चन का आंसर है 11 पेज पर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 15-16 पेज पर। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 40-41 पेज पर। चौथे क्वेश्चन का आंसर है 22 पेज पर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है 15-16 पेज पर। छठे क्वेश्चन का आंसर है 147 पेज पर। सातवें क्वेश्चन का आंसर है 76-77 पेज पर। आठवें क्वेश्चन का आंसर है 55-56 पेज पर। और नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है 133 पेज पर। और दसवें क्वेश्चन का आंसर है 45 पेज पर। अब है ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर 27 पेज पर। हाँ जी, ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर है 27 पेज पर। बारहवें क्वेश्चन का आंसर है 22 से 25 पेज पर। और तेरहवें क्वेश्चन का आंसर है 15-16 पेज पर। चौदहवें क्वेश्चन का आंसर है 103 पेज पर। और पंद्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 52 से 54 पेज पर। सोलहवें क्वेश्चन का आंसर है 43 पेज पर। और सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 65 पेज पर। और अठारहवें क्वेश्चन का आंसर है 88 पेज पर। अब उन्नीसवें क्वेश्चन का आंसर है 88 to 93 पेज पर। और बीसवें क्वेश्चन का आंसर है 45 से 51 पेज पर। इक्कीसवें क्वेश्चन का आंसर है 103 पेज पर। बाईसवें क्वेश्चन का आंसर है 141 से 145 पेज पर। और तेईसवें क्वेश्चन का आंसर है 148 से 151 पेज पर। और चौबीसवें क्वेश्चन का ए पार्ट 147 पेज पर, बी पार्ट 76-77 पेज पर और सी पार्ट 116 पेज पर। अब है पेपर फोर। पेपर फोर का पहले क्वेश्चन का आंसर है 9 पेज पर। 9। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 46 पेज पर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 25 पेज पर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 79 पेज पर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 76 पेज पर। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है 18 पेज पर। सेवन क्वेश्चन का आंसर है 78 पेज पर। एट क्वेश्चन का आंसर है 107 पेज पर। और नाइन क्वेश्चन का आंसर है 148 पेज पर। और दसवें क्वेश्चन का आंसर है 91 पेज पर। हो गया। अब ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर 15 से 19 पेज पर। और बारहवें क्वेश्चन का आंसर है 103 से 108 पेज पर। और तेरहवें क्वेश्चन का आंसर है 46 पेज पर। चौदहवें क्वेश्चन का आंसर है 83 पेज पर। पंद्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 114 पेज पर। और सोलहवें क्वेश्चन का आंसर 121 पेज पर, 121-122 पेज पर। और सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर है 72 से 75 पेज पर। और अठारहवें क्वेश्चन का आंसर है 141 पेज पर। हो गया सभी का। अब है उन्नीसवें क्वेश्चन का आंसर 6 से 10 पेज पर। और बीसवें क्वेश्चन का आंसर है 36 to 38 पेज पर। और 21वें क्वेश्चन का आंसर है 128 से 132 पेज पर। 22वें क्वेश्चन का आंसर है 20 से 27 पेज पर। और 23वें क्वेश्चन का आंसर है 76 से 82 पेज पर। और 24वें क्वेश्चन का ए पार्ट 46 पेज पर, बी पार्ट 146 पेज पर और सी पार्ट 132 पेज पर। अब ये तो आपके हो गए चारों पेपर तैयार। अब आपको नोट्स बनाने बहुत इजी हो जाएगा, अब टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो बुक्स में से छांटने में बहुत टाइम लगता है। जब हम लोगों ने किया ना, फर्स्ट बैच में थे हम लोग, तो उसमें हमें बहुत टाइम लगता था क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में। फिर हमने एक इजी काम किया कि आगे आने वाले बैचेस के लिए इजी हो जाए, हम उनको पेज नंबर बता दें ताकि वो अपने नोट्स फिर फटाफट तैयार हो जाए। अच्छा, इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमें पेपर करना है ना, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, इसमें टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाना है। नहीं तो क्या होता है, हम शुरू के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, जबकि वो क्वेश्चन 10 नंबर का है, और 10 नंबर के क्वेश्चन को हम एक पेज में पूरा करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे। और शुरू का एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसमें हमने एक पेज भर दिया तब भी नंबर तो एक ही मिलेगा। तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाना है। जो पहले 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में कंप्लीट कर लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 20-25 मिनट में हो जाने चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा हम घड़ी में देख के चलें कि हमारे आधे घंटे जब कंप्लीट हो तो हमारा वो 10 क्वेश्चन पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद जो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, उस वो हमारे एक घंटे में पूरे हो जाने चाहिए, एक घंटे में पूरे। क्योंकि 10-10 मिनट या 12 मिनट ऐसे हमारे उसमें लगाएंगे हम, तो हमारे एक घंटे में वो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद है सी पार्ट, वो 10-10 नंबर का है, तो उसको हमें 20-22 मिनट देना है, डेढ़ घंटे में वो हमारे, डेढ़ घंटा उनके लिए चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हाँ जी,
पूरा टाइमिंग कितना है?
3 घंटे का
टाइम,
3 घंटे का टाइम है। सर, ए पार्ट में आपको आधा घंटा, बी पार्ट में एक घंटा और सी पार्ट में आपको डेढ़ घंटा लगाना है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि पहले ए पार्ट और बी पार्ट में ही 1.5-2 घंटे लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हमें एक ही घंटा बचता है जो कि हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और फिर उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते हमें। तो इसलिए हमें अपना टाइम मैनेजमेंट भी शुरू से ही देख के चलना है कि हम उसी टाइम में अपने सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूरा करें, तभी हम सभी अच्छे नंबर ले पाए।
हिसाब से आपको चलना है कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1-2 नंबर वाला, 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा 1.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, और लास्ट में 5-7 मिनट आपके पास और बचे ताकि उसमें आपको रिवाइज कर सकें, क्योंकि 3 घंटे बाद एग्जामिनर ले लेगा पेपर आपका। इसमें कोई चीज पूछनी हो, ठीक है, अभी बीच में करते रहेंगे इसके। हाँ, 3 घंटे का वो 19 मई से 31 मई के बीच में डेट आ जाएगी आपके पास, अभी तो मई में है, आपके घर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो मोबाइल नंबर आपने दिया हो उस पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। वैसे तो 31 जनवरी तक मिल जानी चाहिए, लेकिन बुक्स नहीं आई तो 31 जनवरी तक आप भेज दो घर से, और जिनके पास किताब नहीं आएगी, 2-4 दिन लेट भी जाए तो भी कोई ऐसी आफत नहीं है। हाँ, ये इसमें मदुरई बीके पांडे मनी मदुरई भेजने, इसमें लिखा हुआ है, जो आपको सिलेबस आया ना उसमें सब चीज लिखी हुई है। एग्जाम देना जरूरी नहीं है, 180 सेंटर है हमारे, उसमें कहीं भी दे सकते हो आप। आपने पीसीपी कहाँ किया है, एग्जाम दूसरी जगह दे सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली से आया, पीसीपी यहां किया दिल्ली में, आप दे दो, यू आर फ्री, कहीं भी पेपर आप दे सकते हैं। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा फरवरी में, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं एग्जाम कहां देना चाहती हूं, बस वही पेपर दे देना। फॉर्म बाय डाक आएगा, पहले आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, फिर बाय डाक आएगा, फरवरी में आएगा, फरवरी मार्च में। नहीं नहीं नहीं, हर साल चेंज हो जाता है, दोबारा आएगा। नहीं नहीं, यहां सिंगल स्पेल में ही है, दो बार नहीं है, एक बार में सारा कोर्स है। बाकी जो सेंटर से वहां दो बार जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पूरी इंडिया से लोग आते हैं, इसलिए बार बार खर्चा भी होता है, तो एक बार आना है। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। हाँ, फाइनल के लिए यहां आए या अपने नजदीक के सेंटर पर करें आप, कोई स्कूल कॉलेज में होता है, कोई ऐसा नहीं भी सेंटर पर होगा, कोई भी स्कूल और कॉलेज लिए हुए हमने उसी में आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? देख, इसके बाद भेज भी दी? नहीं नहीं, भेज दिया आपने? अच्छा, नहीं उसमें अलग से कैसे भेजी आपने, इसी हिसाब से भेजी होगी? वही टू तो बताया आपको, हर किताब के दो यूनिट भेजने हैं आपको। भाई पहली किताब में 5 यूनिट हैं, दो भेजने हैं उसके, दूसरी किताब में 5 यूनिट हैं उसके 2 भेजने हैं, तीसरे में 5 है उसके 2 भेजने हैं, चौथी के 5 है उसमें 2 भेजने हैं, 8 हो गए ना, ऐसे तो भेजा होगा आपने, कैसे भेज दिया? 2 यूनिट 2 किताब के भेज दिया आपने सारे। इन्होंने क्या किया कि 10 भेज दी इन्होंने, पहली किताब पूरी भेज दी, दूसरी किताब पूरी भेज दी, ऐसे भेजी ना। चलो बोलो बोलो बोलो, कोई बात। अच्छा कहां लिखा हुआ है यहां? ये दोबारा भेजना पड़ेगा आपको, एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन भेजना आपको, उसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, किसी में 4 दिए होंगे, एक एक क्वेश्चन भेजना है। तो 5 चैप्टर हैं आपके, 5 क्वेश्चन भेजने, लेकिन 2 क्वेश्चन पहले भेजने, 3 क्वेश्चन बाद में भेजने। जो लास्ट है वो 31 मार्च से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पहले में 31 जनवरी है, उसके बाद 5-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, किसी वजह से किताब नहीं पहुंचती तो कोई बात नहीं। और कोई बात पूछनी हो एग्जाम से रिलेटेड? वैसे एक तो क्लास और लेंगे बीच में आपके एग्जाम से रिलेटेड, अभी दूसरे चैप्टर शुरू कर दें, कर देते हैं बच्चे का तो फिर बाद में कर लेंगे। देखिए भाई, अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, एक चैप्टर आपने मॉर्निंग में किया, इसकी भी स्लाइड्स मिल जाएंगी, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया। प्रैक्टिकल क्या है, एक वर्कबुक आई होगी आपके पास, 21 एक्सरसाइजेज हैं उसमें, वो अभी आएगा, वो जो दूसरा है ना वो अभी आएगा आपके पास, वो सारा बताएंगे आपको कैसे फील्ड वर्क बनाना है, कैसे किताब भरनी है आपको। सिलेबस के हिसाब से हम चलते हैं जो आपको दिया हुआ टाइम टेबल। भारत में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमें मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, इम्प्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कौन कौन से चेंजेस हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं जब आप वैल्यू एजुकेशन को अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने विजन ऑफ ए बेटर इंडिया का एक विजन था, उसको यहां पर दिया हुआ है सिलेबस में आपको, वो तीनों चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। नीड ऑफ, पहला जो पार्ट है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्यों पड़ी, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। इसमें 3 बातें आप विशेष रूप से देखेंगे, एक जो घातक हथियार है नशीले पदार्थ हैं और देह व्यापार, इस बीमारी ने केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है, वैल्यू एजुकेशन नहीं दी जाती, उसकी वजह से इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि वर्तमान पीढ़ी को हम मूल्यों की शिक्षा दें, आध्यात्मिकता की बात बताएं, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनका हृदय पिघल जाए जब वो गलत काम करते हैं और वो गलत काम ना करें। इनको जानते हैं सब? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, आपकी बात नहीं करते। आदरणीय दादी जानकी जी ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में क्या कहा, क्यों जीवन में मूल्य की आवश्यकता है, क्यों जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार के भेदभाव व घृणा को समाप्त करने के लिए तीन वैल्यूज की जरूरत है बहुत। एकता, यूनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अगर ये वैल्यूज हमारे अंदर होगी तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। द वैल्यूज ऑफ यूनिटी, ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस आर एसेंशियल टू रिमूव ऑल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट्रेड। ये भी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसको बहुत ज्यादा नोट्स करने की जरूरत नहीं है। कोई कहता पॉइंट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो किताब में भी है। किताब में क्या है कि आगे जो पॉइंट देखेंगे, किताब में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ या पूरा पेज एक दिया हुआ है, उसको याद करना मुश्किल हो जाता है। इन नोट्स में उस पैराग्राफ में से पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, पूरे पैराग्राफ को रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से आज मॉर्निंग में जो चेयरपर्सन है हमारे निर्भय भाई जी, उन्होंने भी अपने व्यूज दिए हैं वैल्यू एजुकेशन के बारे में। और उनका मानना है यदि व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाता है, आपके जीवन में अगर आध्यात्मिक मूल्य आ जाते हैं तो आज के तनावपूर्ण एवं भ्रष्ट माहौल में भी, कितना तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन उनका मानना है कि अगर आपके जीवन में वैल्यूज हैं तो इसमें भी आप सच्ची शांति, प्रेम, आंतरिक शक्ति एवं दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं। हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते, हम प्रेम और आंतरिक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है। तो अगर आपके अंदर आध्यात्मिक मूल्य हैं, तो चाहे कितना गलत वातावरण हो, चाहे कितना भ्रष्टाचार हो, कितना तनावपूर्ण वातावरण हो, उसमें भी हम सच्ची शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। By imbibing spiritual value in life, you can experience real peace, love, inner power and divinity in the stressful and corrupt atmosphere of today. हर केवल ब्रह्मा कुमारी जी नहीं, दुनिया में भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से वैल्यूज का अडॉप्ट किया जाए। और सरकार ने आजादी के बाद से ही बहुत सारे आयोग, बहुत सारी समितियां, बहुत सारी कमेटी बनाई और इन्होंने इस बात पर जोर दिया है, जैसे आपने सुबह भी इससे पहले वाले सेशन में देखा कि जब तक जीवन में यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं होंगी, जब तक जीवन में ह्यूमन वैल्यूज नहीं होंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उन्हें खास तौर से कहा कि जीवन में ट्रूथ, पीस, लव, जस्टिस, कोऑपरेशन, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत है, लेकिन पांच वैल्यूज के ऊपर उन्होंने खास जोर दिया है कि वैल्यूज हमारे जीवन में जरूरी हैं। ये नाम आपने सुना होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो हर दीवार पर, स्कूल में एक दीवार पर फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन ये जरूर लिखे होते हैं। जैक्यूज डेलोर इसके अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इसने बहुत सारे शिक्षाविदों को इसमें शामिल किया था और उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला जिसे हम कहते हैं फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो हमें चाहिए वो चार पर्पज के लिए चाहिए। लर्निंग टू नो, जानने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। लर्निंग टू डू, करने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। लर्निंग टू बी, बनने के लिए शिक्षा चाहिए। लर्निंग टू लिव टूगेदर, और एक साथ जीने के लिए शिक्षा चाहिए। फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जानने के लिए, करने के लिए, बनने के लिए, एक साथ जीने के लिए। उन्होंने फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया कि जो पहले है लर्निंग टू लर्न, इसके लिए हमें एक शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने बीए किया, एमए किया, बीकॉम किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अक्सर ज्ञान नहीं कर सकते। आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कार्यकुशलता, एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है। जब तक कार्यकुशलता हमारे अंदर नहीं है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो तीसरा और चौथा पिलर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। केवल पढ़ने से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आप एक साथ जीना नहीं सीख सकते। इसके लिए क्या चाहिए आपको? मूल्यों की जरूरत है। जब तक वैल्यूज हमारे अंदर नहीं आएंगी तब तक ये तीसरी और चौथी क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आ सकती। इसके साथ साथ मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? और बहुत सारे रीजंस हैं। डेली आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, आम नुक्कड़ पर इसकी चर्चा होती है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य। आज देश में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कितने गलत कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। देश किस प्रकार से आग से जूझ रहा है, पीछे आपने देखा होगा अन्ना हजारे का आंदोलन, उसका अपना कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बुराई को सहन नहीं कर सकता, उसके दिल के अंदर आग लगती है और भ्रष्टाचार से लड़ता लड़ता, दो तीन दिन पहले मैं पढ़ रहा था, वो खुद ही बीमार हो गया बेचारा। जब तक हमारे अंदर वैल्यूज नहीं आएंगे, आपके अंतरात्मा जब तक आपको नहीं कहेगी, तब तक कितने भी कानून बना लें आप, कितने भी कमेटी बना लें, कितने आयोग बैठा लें, जब तक आपकी अंतरात्मा आपको गवाही नहीं देगी तब तक आपके अंदर वैल्यूज नहीं आ सकती। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, आज हम क्या देख रहे हैं? बारिश समय पर नहीं आती, सर्दी समय पर नहीं पड़ती, गर्मी समय पर नहीं पड़ती। सर्दी के मौसम में कई बार बहुत बारिश आ जाती है। पीछे पेपर में आया था कि गर्मियों में बहुत एक दो कंट्री था वहां पर बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी, कई जगह बाढ़ आ गई सर्दियों में। क्यों? आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, एक मारेंगे, दो मारेंगे, तीन मारेंगे, वो चुप रहेगा, लेकिन जब आप लगातार मारते रहेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। प्रकृति के साथ हम क्या कर रहे हैं? पांचों तत्वों की हम अवहेलना कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना जोर दिखा रही है। आज आप देख रहे हैं जंगल कटते जा रहे हैं, लोगों ने पेड़ काट काट कर कॉलोनियां बना ली हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो दिन पर दिन खत्म हो रही है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, लोग इतने लालची हो गए हैं, जमीन तो क्या चांद पर मकान बनाने की सोच रहे हैं। और कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा और उसमें आया था पेपर में चांद पर जमीन बिकाऊ है, ये हाल है। एक वर्ड आया था उसमें, उसको मैं यहां नहीं कह रहा बुकिंग हो रही है। तो बताओ ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो क्या चुप बैठेगी, वो भी खिलवाड़ करेगी। वायलेंस, इसलिए भी हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, कितनी हिंसा बढ़ रही है। सबसे कम कीमत अगर है तो इंसान की है, और व्यक्ति किस हद तक गिर गया है। आज से 2 महीने पहले एक पेपर में आया कि ये तो हमने सुना था कि 1 लाख के पीछे उसने उसकी जान ले ली, 2 लाख के पीछे, 1 करोड़ के पीछे, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि 1 रुपए के पीछे एक व्यक्ति की उसने जान ले ली। 1 रुपए के पीछे चाय वाला था, उसने चाय के पैसे मांगे, 3 रुपया कितने, वो 2 रुपए दे रहा था, वो कहला नहीं 3 रुपए की चाय है। वो कहता हमारे यहां तो 2 रुपए की मिलती है, वो कहला भाई यहां तो 3 रुपए का रेट है, और उसने 1 रुपए के लिए उसको कत्ल कर दिया, गोली मार दी। किस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है। यूएसए में आपने वो किस्सा पढ़ा होगा, एक 12वीं स्कूल का लड़का पिस्टल ले जाता है और वहां पर धनाधन कर देता है, कोई कीमत नहीं है, आदमी महफूज नहीं है। आज जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसकी मां कांपती रहती है कि मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए, पता नहीं कब इसके साथ क्या हो जाएगा। क्यों क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है, मूल्य शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। जब वो आपके अंदर आ जाएगी तो ये गलत काम आप कभी नहीं करेंगे। इसके भी एक और रीजन है, इसलिए भी वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ी, आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ी, बढ़ता हुआ मादक द्रव्यों का प्रयोग, यूज ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। शहरों में चाहे 30-40% लोग शराब पीते हैं, लेकिन गांव की हालत तो बहुत बुरी है, 60-70-80% लोग इसका यूज करते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज में तो ऐसा है कि जितना वो कमाता है उसका 80% वो इसी के ऊपर खर्च कर देता है, और घर में राशन के लिए पैसे नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। और जब उसकी वाइफ घर के राशन के लिए पैसे मांगती है तो उसको मारा और पीटा जाता है। इस कदर शराब का प्रयोग बढ़ रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि जब लोग इसका ज्यादा सेवन कर लेते हैं फिर वो क्या समझते हैं, उस जिस गली में घूमते हैं उस गली का राजा समझते हैं, कभी नाली में लेट जाते हैं, कभी कहीं पड़ जाते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं। वो उस टाइम तो राजा समझते हैं, जब होश आता है फिर उन्हें पता लगता है। तो इसके लिए भी जरूरी है मूल्य शिक्षा देना, आध्यात्मिकता को जागृत करना, नहीं तो देश जहां जा रहा है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं स्कूल के लिए एजुकेशन की जरूरत है, कॉलेज के लिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, या यूनिवर्सिटीज के लिए एजुकेशन की जरूरत है, छोटे बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, नहीं। हर लेवल पर वैल्यू एजुकेशन आध्यात्मिकता की जरूरी है। चारों किले हमें पक्के करने पड़ेंगे, हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कंपनी में जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, ऑफिस में जो क्लर्क और ऑफिसर काम करते हैं, उनको भी उतनी जरूरत है। क्योंकि जब तक सभी के पास वैल्यू एजुकेशन आध्यात्मिकता नहीं होगी, तब तक देश में बदलाव नहीं आ सकता। और जो आज सुबह गुलियानी साहब बता रहे थे अपने लेक्चर में, लोक कथाओं द्वारा अपमूल्यन, बहुत गलत गलत बातें बच्चों के दिमाग में बैठा दी जाती हैं, वो भी एक कारण है। लेडीज ऐसी होती हैं, वो ऐसा होता है, ऐसी कहानियां बनी हुई हैं और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और उससे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसका दूसरा पार्ट है इंप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा का प्रभाव। मूल्य शिक्षा का दो जगह प्रभाव पड़ेगा, एक स्वयं पर प्रभाव पड़ेगा और एक समाज पर। और सबसे पहले मैं खुद को बदलना है, तब समाज बदलेगा और तभी परिवर्तन आएगा। जब वैल्यू एजुकेशन हमारे, आध्यात्मिकता हमारे अंदर आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। वैल्यू एजुकेशन हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, आंतरिक सशक्तिकरण कर इच्छाओं को कम करती है, फिर बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रहती, लालची नहीं होता, ग्रीडी नहीं होता, क्योंकि हमारा इनर एम्पावरमेंट हो जाता है, हमें पता लग जाता है कौन सी ठीक कौन सी गलत, क्या जरूरत है और क्या हमारी ग्रीड है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सरल बन जाती है, इजी बन जाती है। और जब लाइफस्टाइल इजी बन जाएगी, जो दुनिया भर के तनाव भ्रष्टाचार है उनसे हम निजात पा लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है और हो कुछ और जाता है। जब आपके अंदर वैल्यू एजुकेशन होगी तो आदमी सोचेगा वही, बोलेगा वही, करेगा वही और फिर हो भी वही होगा जो उसने सोचा था। कथनी करनी एक समान हो जाती है। और जब आपके अंदर वैल्यू एजुकेशन होगी, शुरू में चाहे आपका विरोध हो, ब्रह्मा कुमारी का विरोध हुआ है, संस्था का विरोध हुआ है, लेकिन फिर आप ही उसके एग्जाम्पल बनेंगे, सैंपल बनेंगे। इसके साथ साथ कुछ सोशल इम्प्लीकेशन भी, समाज में भी बहुत प्रभाव बदलाव आना शुरू हो जाता है। वही बात है, जो आपके अंदर होगा आप ही समाज हो, और जब आप चेंज हो जाएंगे तो समाज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समाज को हम वैल्यू बेस्ड बना सकते हैं और वैल्यू बेस्ड बनाने में ये हमारी मदद करती है। समाज में जो बुराइयां हैं उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के सक्षम हो जाते हैं। आप उस बात को स्वीकार नहीं करते जो गलत है, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन है, भाईचारे को बढ़ाती है। इसमें हम दूसरों को दूसरा नहीं देखते, गैर नहीं कहते, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर आ जाती है, सभी आपस में भाई भाई हैं। भ्रष्टाचार घुसखोरी जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वैल्यूज हैं। गलत काम को आप स्वीकार ही नहीं करते, आपके अंतरात्मा गवाही नहीं देती, इसके उसके विरुद्ध आप लड़ सकते हैं और समाज में एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं और लोगों को एक आदर्श जीवन जीने के योग्य बनाती है। जो वैल्यू एजुकेशन है, एक आदर्श आइडियल लाइफ आप जी सकते हैं। तो कहना मतलब है कि अगर वैल्यूज हमारे अंदर हो, हमारा स्वयं का परिवर्तन हो जाएगा और स्व के परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा, समाज भी परिवर्तित हो जाएगा और जो समाज परिवर्तन हो जाएगा उसके साथ साथ पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और जिस स्वर्ण भारत की हम कल्पना करते हैं, सतयुग की कल्पना करते हैं उसमें देरी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमें खुद को बदलना है। खुद के अंदर वैल्यूज खाली पढ़नी नहीं है बल्कि अपने अंदर धारण करनी है। अब्दुल कलाम, इसका नाम किस किसने नहीं सुना, सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छी तरह सुना होगा, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। 2002 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और उसी साल इसको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। बहुत अच्छे साइंटिस्ट, और इनके अंदर, एक साइंटिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क रीजनिंग पावर होती है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर किस प्रकार से आध्यात्मिकता आई, उन्होंने दो बात कही। भारत के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव था, उनकी पीछे एक कहानी है, वो बाद हम डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट विजन है फ्रीडम, और फ्रीडम को खाली जो 1947 में हमें आजादी मिली वो नहीं है, बल्कि अपने मन की फ्रीडम, मन वाणी क्रम की फ्रीडम, गलत काम करने ना करें इसकी फ्रीडम। कहता अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। और दूसरी, विकास, डेवलपमेंट। अगर एक विद्यार्थी कहता रहे मैं 70% तो उसके 70% से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते। आपको अपना लक्ष्य ऊंचा रखना पड़ेगा, और जब तक आपका लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तब तक वो ऊंचे लक्षण आपके अंदर नहीं आ सकते। इसी प्रकार से अब तक हम ये कह रहे हैं हम विकासशील है, विकासशील है, विकासशील है, तो हमें कहना पड़ेगा हम विकासशील क्यों हैं? हम तो डेवलप्ड कंट्री में हैं, विकसित हैं। और जब आप विकसित कहेंगे तभी आप अपने आप को विकसित देखेंगे और दूसरे लोग भी आपको डेवलप्ड कंट्री की तरह से ट्रीट करेंगे। डॉक्टर कलाम ने कुछ बातें लिखी हैं, वो आपकी बुक में भी हैं। डॉक्टर कलाम कहता है जो ये बात थी कि भी हम दूसरों के ऊपर लांछन डालते हैं। स्कूल का विद्यार्थी कहता है हमारा टीचर ठीक नहीं है, टीचर कहता है मैनेजमेंट ठीक नहीं है, नेता कहता है कि आज का जो पीढ़ी है वो ठीक नहीं है, और लोग कहते हैं नेता ठीक नहीं है, लेकिन ये कभी कोई नहीं कहता कि मैं ठीक नहीं हूं। डॉक्टर कलाम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार सक्षम नहीं है, हमारे कानून बहुत पुराने हैं, नगर पालिका कचरा साफ नहीं करती, टेलीफोन ठीक ढंग से काम नहीं करता, चिट्ठियां ठीक टाइम पर नहीं पहुंचती, देश पूरी तरह खड्डे में जा चुका है। आप कहते हैं और बस कहते रहते हैं, आप क्या करते हैं अपने देश के लिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं जरा सोचिए। डॉक्टर कलाम ने कुछ एग्जाम्पल दिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सिंगापुर की सड़कों पर आप सिगरेट के टुकड़े क्यों नहीं फेंकते, यहां पर लोग जो सिगरेट पीते हैं जहां वो खत्म हो जाते हैं वहीं डाल देते हैं, और चाहे वो किसी घर में गए हुए हो, अचंभे की बात हो, सड़क पर तो डाल दें, किसी घर गए हैं और वहां सिगरेट पी रहे हैं और वह खत्म हो जाती है वहीं उसको फेंक देते हैं। टोक्यो जापान पर आप पी क्यों नहीं थूकते, बोस्टन में हमारे यहां क्या है बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं नकल करते हुए, और यहां तक दूसरों का फोटो भी लगा लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं करते? अन्य देशों की सड़क पर जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं वहां के नियमों का पालन आप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं? जब भारत के लैंड पर उतरते हैं फिर आप वही पुराने शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि आप भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए, यह आपको सोचना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि आज के बाद हम भी अपने देश के प्रति जागरूक और प्रशंसक नागरिक बनकर रहेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि हम सदा एंग्जियस रहते हैं कि हमें विदेशी टीवी चाहिए, हमें विदेशी कमीज चाहिए, विदेशी तकनीक चाहिए। विदेशी के प्रति आपका मोह इतना क्यों है? सदा इस बात को याद रखें, आत्मसम्मान स्वावलंबन से प्राप्त होता है। आप ऐसा क्यों नहीं डेवलप करते कि अपने देश में बहुत सारी चीजें आ जाएं जिस चीज के लिए आप दूसरों पर निर्भर करते हैं? इसमें कुछ पार्ट और है।